हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्लोक संख्या 26 तथापश्य पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरात् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं दुर्योधन जैसे भाइयों लक्ष्मण जैसे पुत्रों अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्नीतम् ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इस श्लोक को तात्पर्य नहीं है इसलिए हम ये दोनों श्लोक आज पूर्ण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन संहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो बहुत दिनों के पश्चात आपका स्वागत है। फिर भी 15 दिन का गैप हुआ। सो अभी भी बहुत से भक्त दीपावली की छुट्टी के मूड में हैं, तो बहुत अपसेंट लग रहे हैं। एनीवे, आज हम आगे का श्लोक शुरुआत करने के पहले पिछले श्लोक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है भूलना। हम भूल जाते हैं और इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। सो हम रिपीट करेंगे 5 मिनट फ्लैशबैक कि हमने पिछले समय पिछले शनिवार को क्या चर्चा की थी। तो हम जो विशेष मुद्दा था, जो विशेष चर्चा का विषय था, उस विशेष विषय पे हम 2 मिनट में चर्चा करके आपको रिमाइंडर देने का प्रयास करते हैं। हमने कहा था कि संसार की प्रमुख 3 विचारधाराएं हैं, संसार में 3 विचारधाराएं हैं, संस्कृति, वेरी गुड, संस्कृति, विकृति और प्रकृति। संस्कृति किसको कहते हैं? जो हमारी है, भारतीयों की। क्या है संस्कृति? दूसरों की आवश्यकताओं को समझकर उनको सहकार्य करें। जो ये करते हैं वे सुसंस्कृत है, वेल कल्चर्ड, वो हमारी संस्कृति है। विकृति क्या है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों की, दूसरों से छीनना, दूसरों को यूज करना और फिर थ्रो कर देना, यूज एंड थ्रो, विकृति। वो हमारी संस्कृति नहीं, वो विकृति है। और प्रकृति, मौका देख के काम करना। यदि मौका है संस्कृति का तो संस्कृति की ओर जाना, मौका है विकृति का तो विकृति की ओर बढ़ना, विकृति का स्वीकार करना। और हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? प्रकृति में आते हैं। कभी ये तो कभी वो, कभी संस्कृति तो कभी विकृति। सो यह भी ठीक अवस्था नहीं है। हमारा जो उत्सव होते हैं, जो बड़े बड़े महोत्सव हम मनाते हैं, दीपावली, दशहरा, इसका उद्देश्य होता है अपग्रेडेशन, हमारे अंदर परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? उच्च स्तर का परिवर्तन। फेस्टिवल आते ही इसलिए है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए। हम यदि प्रकृति के स्तर पे है तो केवल संस्कृति के ही स्तर पे आ जाए, ये महोत्सव का उद्देश्य होता है। सो ये हम पिछले दीपावली के पहले जो महोत्सव दशहरा वगैरह हुआ, उस समय यह विशेष विशेष विषय हमारा था, इस पे हमने चर्चा की है। आज हम 26वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं की मध्य में किसको किसको देखा, किसको देखा, उसकी चर्चा इस श्लोक में है। अर्थात इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि अर्जुन क्या कार्य कर रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने अपना रथ रखा है, रथ रख कर वो क्या कर क्या रहे हैं, है ना। सेनाई और उभय और मध्य 3 बार हुआ है, 1.21, 1.24 और फिर आएगा 2.10। 21 में अर्जुन ने किस प्रकार से कहा था सेनाई और उभय और मध्य? अर्जुन ने कहा था किसकी हिम्मत है मुझसे लड़ने की, कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? उसको पता नहीं है मैं धनंजय हूं, परंतप हूं, धनुर्धारी हूं, अर्जुन हूं, उनको पता नहीं है। जरा देख तो लू कि किसकी हिम्मत मुझसे लड़ने की है। इस भाव से उन्होंने कहा सेनाई और उभय और मध्य 1.21 में, चलो कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, जरा देखू तो सही किसकी हिम्मत है मुझसे लड़ने की, ये भाव। फिर बीच में 24 में सेनाई और उभय और मध्य, ये फिर से शब्द आया। उस समय क्या हुआ 24 में, क्या हुआ? हाँ, वात्सल्य, पर अर्जुन के मानसिकता में क्या हुआ बदल? थोड़े से देखने के पश्चात ईगो जो उनको लग रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास, वो कहीं एकदम उस समय क्रैश नहीं हुआ, उस समय कहीं पे थोड़ा सा टर्न होने लगा, यू टर्न टर्न नहीं हुआ अभी, पर हो गया था, दिशा ले ली थी। और इस श्लोक में अभी क्या हो रहा है, इस श्लोक में दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में जब उन्होंने देखा तो किसको किसको देखा, तो उन्होंने देखा पितृन, पितृन अर्थात अपने ऊपर की पूरी पीढ़ी को देख लिया, अपने पूर्वजों को देख लिया सब। भूरिश्रवा, भूरिश्रवा का नाम आया है। भूरिश्रवा कौन है? दूर से अर्जुन के चाचा लगते हैं, चाचा है ना, पिता तुल्य। भूरिश्रवा को देखे, धृतराष्ट्र और विदुर तो युद्ध में थे ही नहीं, इसलिए उनको पिता तुल्य तो भूरिश्रवा ही रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र तो आ नहीं पाए और विदुर को युद्ध की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी ये बड़ी दुखदायी लग रही थी, इसलिए वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे युद्ध के स्थल पे या युद्ध को समझने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वे अपने तीर्थ क्षेत्र चले गए, तीर्थ यात्रा पे चले गए। सो वहां पे विदुर भी नहीं थे, इसलिए ये भूरिश्रवा जो ऊपर की पीढ़ी में चाचा इनके दूर के, ये उनको देख लिया इन्होंने, अर्जुन ने। सो कहा गया है पिता महान पितृन, पिता महान, पिता महान अर्थात पिता के पिता, पिता के पिता या माता के पिता। तो भीष्म को पितामह कहा गया है, उन्होंने भीष्म को देखा। इसके अतिरिक्त माता कुंती के पिता कुंती भोज, उनको भी उन्होंने देखा। अब देखो क्या क्या देख रहे हैं, पहले उनको ऐसे अपेक्षा नहीं थी कि ये सब देखना पड़ेगा, पर अब देखो ये सब देखना पड़ रहा है उनको। कुंती श्री कृष्ण के पितामह उग्रसेन, सॉरी शूरसेन की पुत्री थी, परंतु शूरसेन जी ने अपनी प्रथम संतान कुंती को अपने मित्र कुंती भोज को गोद में दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज को कोई कन्या नहीं थी, इसलिए कुंती भोज को शूरसेन ने अपने पुत्री को गोद में दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। सो महाराज कुंती भोज ने कुंती महारानी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया और बहुत अच्छे उनको संस्कार दिए। सो कहा जाता है यदि पुत्र होता है तो पुत्र को अच्छे संस्कार के लिए गुरु के पास भेजा जाता है, है ना। पुत्र होता है तो पुत्र को अच्छे संस्कार के लिए गुरु के पास भेजा जाता है, परंतु यदि कन्या होती है तो कन्या को अच्छे संस्कार देने वाले गुरु अर्थात उनके पिता ही होते हैं। सो कन्या के गुरु उनके पिता ही होते हैं जो उनको अच्छे संस्कार और शिक्षा देते हैं। सो कुंती ने दुर्वासा मुनि की बहुत तपस्या की, बहुत अच्छी सेवा की, दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया, और दुर्वासा मुनि जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कुंती महारानी को एक मंत्र दिया, और उस मंत्र की ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती थी, और उस देवता को आमंत्रित करने के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती थी। इस प्रकार से वरदान दुर्वासा मुनि ने कुंती को दिया था। ऐसे कुंती के पिता कुंती भोज, उनको भी अर्जुन ने उस समय देखा युद्ध स्थली में। फिर है आचार्यान अर्थात आचार्य, आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य कृपाचार्य, है ना। सो द्रोणाचार्य ये ब्रह्मदेव के पुत्र है, बड़े बड़े इतने उच्च कोटि के आचार्य को देखकर अर्जुन थोड़े से अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज नहीं हुए हैं, परंतु अभी विचार करने की जो उनकी शक्ति है, कौन सा विचार करने की, धर्म पे आधारित विचार, धर्म के आधारित विचार करने की शक्ति उनकी धीरे 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 वो भावनात्मक होते जा रहे हैं इनको देखकर, और अभी धर्म के आधारित वैचारिक शक्ति उनकी कम होती जा रही है, ऐसे आगे होगा। तो मातुलान अर्थात मामागण, सारे मामाओं को देख लिया, पिताओं को देखा, पितामहों को देखा, आचार्यों को देखा, मामाओं को देखा, शल्य तथा शकुनी मामा थे इनको भी उन्होंने देख लिया। भ्रातृन अर्थात भाईगण, 100 कौरव भाई, सबसे बड़ा दुर्योधन भाई तो है, इन सबको अर्जुन ने देखा। अब 100 भाइयों के व्यतिरिक्त एक दासी पुत्र भी थे युयुत्सु, उनको भी उन्होंने देखा, अर्थात कोई भाई ऐसा नहीं था जो युद्ध के बाहर होगा, सारे भाई युद्ध करने के लिए तैयार थे। पुत्रान अर्थात पुत्र गण थे, इन भाइयों के भी पुत्र उस युद्ध में युद्ध के लिए तैयार सुसज्ज थे, और इस प्रकार से पूरी तरह से फैमिली वार, पूरा पूरी संपूर्ण परिवार, न केवल परिवार, वंशज और पूर्वज सब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और विषय क्या है युद्ध का? क्यों युद्ध कर रहे हैं और कौन युद्ध कर रहे हैं? कौरव पांडव अर्थात एक परिवार, एक परिवार युद्ध कर रहा है। क्यों कर रहा है? नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। आज के युग में एकदम सही शब्द है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कब होता है? कब कोई एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति परिवार में स्वार्थी हो जाते हैं। एक या एक से ज्यादा व्यक्ति जब परिवार में स्वार्थी होते हैं तो डिस्प्यूट हो जाता है। फिर उस परिवार में समझाने के लिए भगवान भी क्यों ना आ जाए? समझते कृष्ण थे ना, कृष्ण ने समझाया, शांति दूत बन के गए, समझाए भगवान, फिर भी स्वार्थ का प्रभाव इतना परिणाम कारक रहता है कि वो भगवान की भगवत्ता को भी नहीं समझता है। भगवान की परिस्थिति, भगवान की जो शक्ति है उसको भी नहीं समझता है। भगवान का जो विशेष विशेष दया भाव है, भक्त वत्सलता है, कृपा भाव है, भगवान का जो विशेष ऐश्वर्य है उसको भी नहीं समझता है। इस प्रकार से जब स्वार्थ भाव जागृत होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा ऐश्वर्य, मेरा स्वार्थ और मैं, बस भगवान भगवान नहीं दिखते हैं। कृष्ण भगवान है, शास्त्रों में वर्णन है कई जगह पे। आप अर्च विग्रह का हम दर्शन करते हैं, अर्च विग्रह का दर्शन करने से हमारे चरित्र में परिवर्तन हो जाता है, हमारा आचरण बदल जाता है। यदि हम सच्चे हृदय से, शुद्ध अंतकरण से अर्च विग्रह के पास, हम रोज दीपदान करने आते, सब लोग आते हैं, सब लोग हम दीपदान करते हैं एवरीडे, कार्तिक मास में शाम के समय भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान की उस अर्च विग्रह के सामने हम जब खड़े होते हैं तो खड़े होते होते रोज ऐसा करते हैं तो हमारे आचरण में बदल हो जाता है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, आचरण में फर्क पड़ जाता है, उच्च स्तर का आचरण हम अपनाते हैं। इतना प्रभाव है अर्च विग्रह के दर्शन का। तो दुर्योधन को तो साक्षात कृष्ण ने दर्शन दिया, साक्षात कृष्ण समझाने गए, दर्शन ही नहीं दिया, केवल समझाया, पूरा माथा पच्ची किया, अरे भाई ऐसे युद्ध मत करो, चलो आपको सब चाहिए आप सब ले लो, उनको 5 गांव तो दे दो, इतना समझा रहे कौन? भगवान कृष्ण। तो इतना समझाने के पश्चात भी दुर्योधन के कैरेक्टर में या पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? स्वार्थ और विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वो सही उत्तर है, बट हम कैसे समझे कि अभी विनाश काल आ गया है? समस्या तो ये है, हमको ये कहावत तो पता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पर हमको ये नहीं समझता है कि विनाश काल आ गया है। है ना, तो हमारी बुद्धि तो विपरीत ही चलती है ज्यादातर। जैसे दुर्योधन है, उनको ये थोड़ी ना पता था कि विनाश काल आ गया है, बुद्धि इसलिए विपरीत चल रही थी। सो भगवान भी साक्षात हमको दर्शन देवे, सामने प्रकट हो जाए और हमसे बातचीत करने लग जाए, फिर भी हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में, हमारे पर्सनालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम आसक्त हैं। प्रचंड आसक्ति, केवल विषय से आसक्ति है। दुर्योधन की यही अवस्था है। कई बार हम बोलते, इतनी बार मंदिर गए, अभी नवरात्रि हुई, 9 दिन एकदम उपवास किया बहुत लोगों ने, कई जब से समझ में आ रहा है तब से रोज शनिवार को भगवान के सामने जाके, कोई हनुमान जी के, कोई भगवान राम को, कोई अपने मंदिर में आके, कुछ मन्नत मांगता है, कोई नारियल फोड़ता है। कब से नारियल फोड़ रहे, कब से नारियल फोड़ते आ रहे, लेकिन कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? चेंज तो नहीं हो रहा है, कुछ हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसे थे वैसे ही है। या हो सकता है डिमोशन हो गया हो, अपग्रेडेशन के बदले डिग्रेडेशन हुआ हो, हो सकता है। दैट इज, अरे वो ज्यादा संभवता उसकी ज्यादा है, संभावना उसकी ज्यादा है। ऐसे क्यों हो रहा है? सेल्फिशनेस, प्राइड, आसक्ति, इन सिंपल वर्ड प्रचंड आसक्ति, भौतिक आसक्ति। तो प्रश्न दूसरा मन में आता है, आसक्ति की क्या बात है? हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इच्छा है धन कमाए और धन को प्राप्त करके और धन प्राप्त करे, और धन प्राप्त करके और धन प्राप्त करे, और धन प्राप्त करके और धन प्राप्त करे, इसमें क्या बुरा है? व्हाट इज रॉन्ग? कोई गलती थोड़ी है। किसी को कोई दुख नहीं देते, किसी को कोई हैरान नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, अपना करते रह रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? है ना? हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, लेकिन भले ही वो ऐसा है, परंतु फिर भी उसमें बुरा क्या है? आवश्यकता है, वो आवश्यक है, धन आवश्यक है, घर, अन्न वस्त्र निवारा आवश्यक है, आजकल के समय में मोबाइल भी आवश्यक है, अब कार भी आवश्यक है। प्रभु जी, एक समय था कि वो कार वगैरह मोबाइल ये सब मिजाज की बातें हुआ करती थी, आज आवश्यकता है, अब आवश्यक है, आप इसको आसक्ति कैसे बोल सकते हैं? जरूरत से ज्यादा। अब जरूरतें कितनी है? इनसिक्योर फीलिंग, दिस इज द आंसर। इनसिक्योर फीलिंग, भय। हमारी आसक्ति कम क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम बुरे इंसान नहीं है। हम नहीं कह रहे कि हम बुरे हैं, हम आसक्ति रख रहे हैं इसलिए बुरे, ऐसा नहीं। हम तो अच्छे इंसान है, हम सब बहुत अच्छे इंसान है, एवरी सैटरडे आते क्लास में, वेरी नाइस पीपल, बुरे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आसक्ति है, तो आसक्ति क्यों है? क्योंकि भय है। क्या भय है? अनेक प्रकार का भय है, फियर, अनेक प्रकार का भय है। ये भय एक ऐसी वस्तु है जो हमसे सब कुछ करवाती है, हमको दौड़ाता है, हमको हैरान करता है, हमको आसक्त बना देता है, और इसका कोई टैबलेट भी नहीं मिलता है कि सिंगल एक दिन एक टैबलेट खा लूं भाई चला गया हर में हमेशा के लिए, ऐसा भी नहीं है। कोई कितना भी बड़ा बन जाए उसके पास भय है ही, कोई कितना भी छोटा बन जाए उसके भी पास भय है ही। ये भय के कारण हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, समाप्त नहीं होता है। ये मूल कारण है। बाकी आसक्ति के दूसरे भी कारण है, स्वार्थ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति का भाव, ये है। परंतु मूलतः जो खत्म नहीं होता है, जो नित्य लगा रहता है जो भाव, वो है भय। वो क्या है? भय। और भय को दूर करना है तो क्या करना होगा? हाँ, भय, भक्ति से ही भय दूर हो सकता है, भक्ति से ही भय दूर हो सकता है। अन्यथा भय को दूर करने का कोई तरीका नहीं। हम कर्म कितने भी कर ले, हम कर्म कितने भी अच्छे करें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय पे हमको कोई ना कोई विषय हमको भयभीत अवश्य करेगा। हम कर्म कर रहे, बहुत यशस्वी हो रहे, सब ठीक है, परंतु कभी एक दिन हमारी शारीरिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उससे भयभीत हो जाएगी। शरीर वगैरह सब ठीक ठाक है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती है, उससे हम भयभीत हो जाते हैं। रिलेशनशिप वगैरह ठीक है, शारीरिक समस्या ठीक है, शारीरिक अवस्था ठीक है, आर्थिक अवस्था खराब हो जाती है। आर्थिक अवस्था ठीक है, शारीरिक अवस्था ठीक है, सामाजिक आह्वान आ जाते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की ओर से हमको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यानी समथिंग इज ऑलवेज देयर, नित्य कुछ ना कुछ रहता ही है, इसलिए भय रहता है। परंतु यदि हम भक्ति में है, यदि हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति से भय कम 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 होते जाता है। सो भक्ति करना चाहिए, जो इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है वो व्यक्ति ही आनंदी रहता है, वही व्यक्ति आनंद का अनुभव कर सकता है। क्योंकि आनंद का अनुभव संसार में किसी को भी नहीं ऐसा कहते हैं, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। इसके ऊपर चर्चा 2-3 सेशन पहले हमने की थी, परंतु किसी किसी को ऐसे लगता है, नहीं नहीं प्रभु जी, हर व्यक्ति दुखी नहीं है, वो हमारा फलाना फलाना व्यक्ति सब करता है, सब सब करता है। आप जो बोल रहे हैं ना, ये चार पाप है, वो तो जन्मता ही वो चारों पाप कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, करते आ रहा है, बहुत सुखी है, वेरी हैप्पी। आप कैसा बोल सकते हो कि वो हैप्पी नहीं है? मैं देख रहा हूं, मेरा बॉस है ऑफिस का, वेरी हैप्पी पर्सन, सब मजा करता है, 2 बजे पार्टी से घर पे आता है, सब मजा करता है, वेरी हैप्पी पर्सन। हाउ कैन यू से, कैसे बोल सकते हैं आपकी वो दुखी है? किसी ने हमको उदाहरण दिया था, प्रभु जी आप ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो लादेन कितना सुखी है देखो, अभी नहीं है बेचारा, लेकिन जब था तब इज वेरी हैप्पी पर्सन, सब कर दिया अभी मजा कर रहा है, कौन उसको क्या कर सकता है ना, ऐसे हमको लगता है। वास्तव में हमारे दृष्टि से लगता है कि दूसरा सुखी है, नहीं क्या? दूसरे की खेती हमेशा हरी दिखती है, अपनी हमेशा बंजर लगती है खेती। सो ऐसा हमको लगते रहता है, वो स्वाभाविक है, परंतु उसका मूल कारण क्या है, सुख किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं, ये देखिए कि वो व्यक्ति कितना भयभीत है, ये देखिए। कोई कैसा भी है, कुछ भी करता है, हमको ये देखना है कि वो व्यक्ति वास्तव में कितना भयभीत है। यदि भयभीत है तो वो सुखी नहीं हो सकता, आनंदी नहीं हो सकता। सो सुख और आनंद का जो प्रमुख मापदंड है वो क्या है? निर्भयता, निर्फियरलेसनेस, और वो प्राप्त होती है भक्ति से। इसलिए कहते हैं भक्ति में आनंद है, क्योंकि भय दूर हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आसक्ति, दुर्योधन को आसक्ति थी, इसलिए कृष्ण साक्षात स्वयं सामने प्रकट थे, उनको समझाने गए, शांति प्रस्ताव बताने गए, सब कुछ करने गए, परंतु फिर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि आसक्ति है, बहुत ज्यादा आसक्ति है। और आसक्ति इसलिए है क्योंकि वो उनका तो सबसे बड़ा जो स्वभाव दुर्योधन का सबसे प्रमुख था, वो था इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग करना चाहते थे। और फिर दूसरा उनको ये भय था कि जो उनका साम्राज्य है वो दूसरे ने किसी ने नहीं लेना चाहिए, वो उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो एक प्रकार का ये भय कि दूसरा लूट लेगा, जो मेरे पास है वो पांडव ले लेंगे, भीम ले लेगा। तो ये एक भय था, ये भय के कारण भी उनकी आसक्ति और बढ़ गई, और ही बिकेम एकदम आसक्त पर्सन, आसक्त व्यक्ति बन गए, जिसके कारण उनको भगवान सामने हैं। इनफैक्ट चतुर्भुज रूप में भी यदि दर्शन दिया ना भगवान ने, शंख चक्र गदा पद्म लेके, तो भी हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना हमारे अंदर भय भर चुका है, जिसके कारण हम आसक्त हो चुके हैं, कि हम सोचेंगे कि यार ये सामने तो आ गए, अपने शब्दों से पीछे हट गए तो कि हमेशा भयभीत, संशय का वातावरण और भय का वातावरण है। इसके कारण हमारे परिवर्तन, हमारे चरित्र में, हमारे पर्सनालिटी में बदल नहीं होता है, और वही बदल भी दुर्योधन के भी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में वो बदल नहीं हो पाया है। कृष्ण साक्षात थे, फिर भी उनके पर्सनालिटी में वो बदल नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रहे। यहां पर अर्जुन की यदि हम स्थिति देखते हैं, तो अर्जुन एक सात्विक व्यक्ति है, एक सात्विक व्यक्ति, वो सभी में अपनापन उनको दिख रहा है, ये सब मेरे लोग हैं, वो वो सामने धनुष बाण लेके खड़े हैं अर्जुन की गर्दन को काटने के लिए, लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये तो मेरे लोग हैं। एक सात्विक विचारधारा होती है कि व्यक्ति सबको अपना समझता है, भले ही वो शत्रु क्यों न हो, परंतु किसी ना किसी रूप में उसने कुछ तो हमारे साथ संबंध रखा है, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं, हो तो मेरा ही है। ये सात्विक गुण है। सो अर्जुन सात्विक स्तर पे होने के कारण उनको ये सब कुछ दिख रहा है। और ये बात कौन किसको कह रहा है आपको पता है? ये श्लोक कौन किसको कह रहा है? अरे ये महत्वपूर्ण बात है। संजय धृतराष्ट्र को ये समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे कि देखो अर्जुन का विचारधारा अर्जुन की कैसी है, देखो अर्जुन क्या सोच रहे हैं। हाँ, अर्जुन की विचारधारा देखिए। अर्जुन सबको कह रहे हैं, ये तो मेरे चाचा है, ये तो मेरे मामा है, ये तो मेरे भाई है, ये तो मेरे पुत्र पौत्र है, ये तो मेरे दादा परदादा पितामह आचार्य है। और याद कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, संजय ने धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न का उत्तर दिया था। पहला प्रश्न क्या था? मेरे पुत्र। और दूसरा प्रश्न था पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो मेरे पुत्र का उत्तर भी संजय ने दिया था, बताया था कि ये देखो अभी दुर्योधन क्या कर रहा है। आचार्यम उपसंगम्यम, आचार राजा वचनम ब्रवीत। उन्होंने कहा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम ब्रवीत। ये संजय जब दुर्योधन की बात धृतराष्ट्र को कह रहे थे तो वे बोल रहे थे कि राजा दुर्योधन, वो आचार्य के पास गया। भाव देखिए, राजा दुर्योधन वो आचार्य के पास गया। और फिर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सामने शत्रु पक्ष खड़ा है ना, यही देखा ना हमने पहले दो तीन श्लोकों में, फर्स्ट 1.2 1.3 में द्रोणाचार्य को दुर्योधन भड़का रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं। और क्या कह के कह रहे, देखिए आपके शत्रु, देखिए आपके सामने खड़े है, इनको मारिए, जरा भी अलर्ट रहिए, थोड़ी भी यदि आपकी आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया तो अनर्थ हो सकता है, एक को भी छोड़ना नहीं, सबको। ये सब दुर्योधन बोल रहे हैं और ये बात संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। और अब अर्जुन के विषय में भी संजय ही धृतराष्ट्र को समझा रहे कि देखिए अर्जुन कैसे सोच रहे हैं। अर्जुन, वही अर्जुन ये सोच रहे कि ये तो मेरे लोग हैं। और वही दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे कि इनको मारो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध करने के लिए निकले हैं, दोनों मारना चाहते हैं, दोनों बहुत नरसंहार करना चाह रहे हैं। युद्ध का भाव अर्थात नरसंहार का भाव, किसी के अंदर युद्ध करने की इच्छा अर्थात क्या, वो चाहता है कि नरसंहार करे, ऐसा है। सो नरसंहार के भाव से दोनों उतरे हैं, युद्ध के भाव से उतरे हैं, परंतु अंतर क्या है? दुर्योधन को कहा जाता है आतताई, पापी, अधर्मी। अर्जुन को कहा जाता है भक्त, धार्मिक, सात्विक। वो भी लोगों को मार रहे हैं, ये भी लोगों को मार रहा है। दुर्योधन भी मार रहा है, दुर्योधन ने भी कई लोगों को मारा, अर्जुन ने भी हजारों योद्धाओं को मारा। दुर्योधन को बुरा कहते हैं, अर्जुन को भला कहते हैं, क्या डिफरेंस है? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों के उद्देश्य में डिफरेंस है, इंटेंशंस। व्हाट मैटर्स इज इंटेंशंस, नॉट एक्शन। एक्शन तो दोनों की सेम है, दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, परंतु उद्देश्य दोनों का भिन्न है। उद्देश्य अर्जुन का बड़ा दिव्य है। अर्जुन का उद्देश्य क्या है, ये संजय की इस बात से पता चलता है। अर्जुन उन सब में अपने लोगों को देख रहे हैं। सो हम अभी 10 मिनट में आगे का भी श्लोक करते हैं, क्योंकि उसको तात्पर्य नहीं था, पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम चर्चा करते हैं। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धुन अवस्थितान् कृपया परया विस्तो विषिदन्निन् अम्रवित। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले, ये सब को देखा उन्होंने, इन सब को देखकर करुण भाव उनके हृदय में आ गया। करुण भाव, करुण भाव ये एकदम सात्विक गुण है, प्योर फॉर्म ऑफ सत्व। करुणा आ जाती, कंपैशन हो जाता है, व्यक्ति को दया उत्पन्न हो जाती है, करुण भाव उनके हृदय में जागृत हुआ। वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि यदि ये युद्ध हुआ तो लोग तो मरेंगे, और कोई भी मर गया, कोई भी, तो वो तो मेरा अपना ही है। दुर्योधन भी मर गया तो भी वो मेरा भाई है। इस प्रकार से अर्जुन सोच रहे, कोई भी मर गया तो मेरा भाई है, यदि पितामह के साथ में युद्ध करता और उनकी मृत्यु हो गई तो वो तो मेरे पितामह है, उनके साथ युद्ध की तो बात बहुत दूर की है, उनको तो मैं उनके साथ तो अपनी वाणी भी नहीं लड़ा सकता, शब्द से भी मैं उनसे डिबेट वाद विवाद नहीं कर सकता, शस्त्र से तो छोड़िए शब्द से भी मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता, और उनके साथ मैं शस्त्र से युद्ध करूं। द्रोणाचार्य जिन्होंने ये सब कुछ मुझे सिखाया, एकदम बाल्यावस्था से मुझे प्रेम करते हैं, विशेष कृपा उनकी रही है, बहुत कुछ ज्ञान उन्हें दिया है, और वही ज्ञान मैं उनके ऊपर चलाऊं, वही शस्त्र उनके ऊपर चलाऊं, ये सब वो सोच रहे हैं। तो इदम समुपस्थितम अर्थात ये सब कुछ जो यहां पे उपस्थित है उन सब के साथ मैं कैसे युद्ध करूं। देखिए अब यहां से टर्न अराउंड हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, टर्न हो रहे हैं। कहां वो अर्जुन जिन्होंने कहा था, हे कृष्ण मैं भी देखना चाहता हूं किसकी हिम्मत है मुझसे लड़ने की, चला ले चलो मेरा रथ। और वही अर्जुन देखिए परिस्थिति बदल गई है, अभी सोच रहे हैं कि कैसे मैं क्या लाभ, क्यों मैं इनको मारूं। भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर, ये जो अर्जुन की मानसिकता हुई है इसका उत्तर भगवान ने दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया है, इसलिए आज हम उस उत्तर की विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, उस उत्तर को हम जब वो अध्याय दूसरा अध्याय शुरू होगा तीसरे श्लोक में हम तब आपको सभी को स्मरण करवाएंगे कि ये प्रश्न था अर्जुन की, ये बात अर्जुन का ये विचार था कि मैं क्यों युद्ध करूं, क्यों अपने लोगों को मारूं, उससे मेरा क्या लाभ, मेरा तो नुकसान ही होगा, सब मेरे ही लोग मर जाएंगे। कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया वो तीसरे श्लोक में 2.3 दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहेंगे, उसमें भगवान कहते कश्मलम मिदम कश्मलम, ये सब विचार आपके अंदर आए कैसे, आप जैसा व्यक्ति ऐसे कैसे विचार कर सकता है, केवल अपने परिवार का, केवल अपना, ये उसकी चर्चा विस्तृत दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में है, और फिर दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रश्न के ऊपर उत्तर देंगे उस उत्तर को श्रवण करके अर्जुन फिर दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे 2.7 में। तब अर्जुन कहेंगे कि ये कृष्ण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी कृपा करके मेरा आपके शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, कार्पण्य दोष प्रहुत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्ण चेता शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्ने, कहेंगे कि मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार करके क्लियर क्लियर बात बताओ, अभी मुझे क्या करना है, एकदम सीधी बात बोलो, जो धर्म क्या कहता है उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर आसान जो मुझे समझे ऐसी बात बोलो आप, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु, अभी तक तो आप मेरे फ्रेंड थे अभी तक तो मैं आपको मित्र की तरह समझ रहा था, पर अब मैं आपको गुरु के रूप में देखूंगा, क्योंकि अब मेरे सामने जो संभ्रम की स्थिति हुई है वो आप ही इसका निराकरण कर सकते हो। तो ये दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में हम इसकी चर्चा करेंगे। अर्जुन को कृष्ण युद्ध के लिए कहते कि युद्ध करना अनिवार्य होता है, कोई स्थिति में दंड नीति बहुत अनिवार्य होती है, साम दाम दंड और भेद, चार नीतियां है ना, सब जानते हैं हम, साम दाम दंड और भेद। साम अर्थात यदि शत्रु, इसकी चर्चा हुई है क्या हमारी, नहीं हुई, यदि शत्रु बहुत बहुत ही क्रूर है और मान नहीं रहा है, समझौता संधि नहीं कर रहा है, तो ऐसे शत्रु को फिर क्या कीजिए, शिक्षा दीजिए, शिक्षा अर्थात ज्ञान दीजिए, ज्ञान बांटिए, उसको ज्ञानी बनाइए। देखिए नीति शास्त्र कहता है शत्रु के ऊपर विजय करना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, पहले साम नीति का उपयोग करो, शत्रु को ज्ञानी बनाओ, उस ज्ञान से उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा और वो आपका मित्र हो जाएगा। तो प्रयास पहले हमारा क्या होना चाहिए, अपने शत्रु को साम ज्ञानी बनाइए। यदि वो फिर भी नहीं मानता है, ज्ञान ले लिया लेकिन फिर भी नहीं मानता है, आपने ज्ञान दिया और उसने ज्ञान ले लिया लेकिन शत्रुत्व को नहीं छोड़ रहा है, तो फिर क्या करो, दाम दाम, फिर आप उसको पारितोषिक दो, कुछ गिफ्ट दो, कुछ गिफ्ट दो, अनेकों अनेकों प्रकार के जो उसको अच्छे लगते हैं। अपने को जो अच्छे लगते हैं वो गिफ्ट नहीं देना चाहिए, जिसको हमको गिफ्ट देना है उसको जो अच्छा लगता है वो गिफ्ट देना चाहिए। ये गिफ्ट की अर्थात पारितोषिक या बख्शीश की परिभाषा है। सो गिफ्ट दो शत्रु को जो अच्छा लगता है, उसने गिफ्ट ले लिया, ज्ञान भी ले लिया, गिफ्ट भी ले लिया, फिर भी शत्रुत्व नहीं छूट रहा है, साम दाम हो गया दोनों, अब क्या करना होगा, दंड नीति का उपयोग करना होगा, उसको दंडित करना पड़ेगा, युद्ध करना होगा। युद्ध करने के पश्चात, दंड देने के पश्चात भी नहीं मान रहा है, उसके पश्चात भी नहीं मान रहा है, तो चौथा क्या है, भेद, भेद नीति। ये हो गया हमारा पहले, आप भूल गए लगता है। भेद नीति किसको कहते हैं, कपट, छल और कपट करके उसको परास्त कर दो, ये चौथी है, भेद, छल और कपट करके उसको परास्त कर दो। जैसे कृष्ण ने कई बार इस महाभारत के दौरान हम देखते हैं कि कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए वो किया है, छल और कपट हमारे इंद्रिय भोग के लिए नहीं करना है, धर्म की रक्षा हेतु। सो भेद नीति अर्थात क्या, ये तीनों यदि फेल हो गए तब भेद नीति तक जाना है। हमारे आज की सिचुएशन क्या है, हम पहले ही से शुरुआत ही भेद से शुरू करते हैं, पहले कपटी हो जाते हैं, छल करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो उसी पे हम अटके रहते हैं, ना साम ना दाम ना दंड, सीधा भेद, भेद नीति पे ही हम कार्य करते हैं, वेरी डेंजरस। इसलिए इस युग को कलह का युग कहते हैं, क्योंकि हमने नीति जो अपनाई है वो नीति कौन सी है, भेद नीति है, कपट की नीति है, छल की नीति है, और कपट और छल की नीति के कारण कभी भी हम अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम शत्रु को जीतेंगे, शत्रु को पराजित कर देंगे, परंतु शत्रु के मन को नहीं जीतेंगे, शत्रु जो हमारा है उसके अंदर परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कपट ही कपट है, एक ही तो नीति जानते, कभी हमने उसको पारितोषिक ही नहीं दिया, कभी हमने उसको ज्ञानी बनाने का प्रयास ही नहीं किया, ये कुछ भी नहीं किया, शुरुआत से ही कपट कर रहे हैं, शुरुआत से ही छल कर रहे हैं, तो इसके कारण हमको कभी यश नहीं आता है। एक शत्रु खत्म हो गया कि दूसरा शत्रु तैयार हो जाता है, दूसरा शत्रु समाप्त हुआ, शत्रुत्व खत्म हुआ, समाप्त हुआ कि तीसरा शत्रु हो जाता है। पड़ोसी के साथ झगड़ा चलता है, वो खत्म नहीं होता है तो घर में पत्नी के साथ झगड़ा होता है, पत्नी के साथ झगड़ा खत्म नहीं होता है तो समाज में कोई खड़ा हो जाता है, चाचा मामा ताऊ, और वो झगड़ा करते हैं, वो नहीं होते हैं तो प्रोफेशनल प्रोफेशन में हमारे ऑफिस में झगड़े होते हैं, वो नहीं होते तो लोकल ट्रेन में झगड़े होते हैं, छुटकी छुटका नहीं है कहीं से, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हम अपने अंदर वो परिवर्तन अभी तक नहीं किए हैं और हम एक ही नीति का पालन करते हैं। यदि कोई हमारे मन के जैसा नहीं है, हमारे हमसे शत्रुत्व का भाव रखता है, तो तो हम क्या करते हैं, उसको उसके साथ भेद की नीति करते, कपट करते हैं, और वो कपट फिर बढ़ते ही बढ़ते जाता है। दिस इज वेरी डेंजरस। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति जब बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है, तो एक दिन ऐसा आता है युद्ध करना पड़ता है, वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है। ऐसी जो छोटी 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 बातें, आप थोड़ा सोचिए, ये बहुत गंभीर विषय है। हम थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलिए, अपनी दृष्टि को जरा व्यापक बनाइए और देखिए कि क्या हर जगह झगड़ा नहीं हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा थोड़ा व्यापक बनाइए, हो रहा है हर जगह झगड़ा है। इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन, बहुत गंभीर समस्या है। आप कितनी भी समाज कल्याण की पॉलिसीज निकालिए, कितने भी प्लान बनाइए समाज कल्याण के लिए, लेकिन हर कोई झगड़ रहा है, हर कोई झगड़ रहा है। क्या कल्याण होगा, होगा कल्याण? कितनी भी स्कीम्स निकालिए आप, कुछ भी कीजिए, कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के अंदर भेद की नीति है। भेद की नीति होने के कारण इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। नेचुरल जस्टिस नहीं होता है, जो निसर्ग नैसर्गिक जस्टिस होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए, वो न्याय नहीं होता है, नेचुरल जस्टिस नहीं होता है, क्योंकि हर जगह कपट है। हर जगह कपट होने के कारण युद्धजन्य परिस्थिति हो गई है प्रभु जी, नहीं? और इस ऐसे युद्धजन्य परिस्थिति में, ऐसे युद्ध को लड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास इन दो स्थितियों को निपटने के लिए, कन्फ्लिक्ट अर्थात युद्ध, और दूसरा होता है आपातकालीन परिस्थिति, इन दोनों को निपटाने के लिए हमारे पास कोई खंबीर नेता चाहिए, कोई ग्रेट वॉरियर चाहिए, कोई सरदार चाहिए, कोई बड़ा सर सेनापति महानायक चाहिए, जो इस युद्ध में हमको जितवा सकता है, विजयी करा सकता है। कौन है? पांडवों के पास कौन था? हमारे पास है क्या? है क्या? है क्या? है? राधा गिरधारी तो तैयार है, हम तैयार है क्या? कृष्ण इज रेडी ऑलवेज, आर वी रेडी? कृष्ण उनके नाम के माध्यम से हर जगह उपलब्ध है, एवरीवेयर। कृष्ण ने अपने आप को एकदम, कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि सौलभ्यम, सौलभ्यम अर्थात सुलभता से उपलब्ध है। कृष्ण को आपको प्राप्त करना है, कृष्ण को आप अपने पक्ष में रखना चाहते हो, तो हिमालय में जाके 7,000 वर्ष तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, सर नीचे पैर ऊपर करके साधना करने की आवश्यकता। क्या करना होगा? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। भयंकर युद्धजन्य परिस्थिति है, और ऐसे युद्धजन्य परिस्थिति में अपने जीवन का रथ यदि कृष्ण संभाल रहे हो, यदि उस अश्व की जो दौर है वो हमने कृष्ण के हाथ में दी हुई हो, तो हमको क्या भय है? कितने भी युद्धजन्य परिस्थिति उत्पन्न होने दीजिए, कृष्ण हमारे पक्ष में है, और कृष्ण को यदि हमारे पक्ष में करना है, कृष्ण रेडी है हमारे पक्ष में आने के लिए, ऑलवेज तत्पर है। हम लोग रेडी नहीं है, हम लोगों को थोड़ा सा संशय आ जाता है, थोड़ा सा डाउट आ जाता है, संशय आ जाता है ना? अच्छा, श्रद्धा जो है, विश्वास पूरा पूरा नहीं बैठता है, इसलिए कभी कभी परिस्थिति हमारी बिगड़ जाती है। परंतु हम प्रार्थना करेंगे कि आज का बहुत अच्छा, आज की बहुत अच्छी तिथि है, गोपाष्टमी है, इस गोपाष्टमी के अच्छे तिथि पे हम कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण हम आपको चाहते, आप हमको, आप चाहिए, हमको पता है कि अब हम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्धजन्य परिस्थिति है, सब जगह पे युद्ध का वातावरण है, ये युद्ध ही है, परंतु यदि आप हमारे साथ हैं तो कोई भी युद्ध हम जीत सकते हैं, कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। हे कृष्ण, कृपा करके आप नित्य हमारे साथ रहिए। और कृष्ण कहते, बिल्कुल मैं नित्य आपके साथ ही हूँ, बस आप पुकारे तो सही। आपको कम से कम पुकारने का तो काम करना पड़ेगा, उतना तो करो। तो इसलिए आज हम एज यूजुअल एक माला जप करेंगे। 9:10 हो गया है, इसलिए क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछिए, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। कोई प्रश्न नहीं तो जब शुरू करते हैं। हाँ बोलिए मत जी, क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा है, क्या क्या क्या? शत्रु को ज्ञानी कैसे बना सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसा इसमें कहा गया कि साम दाम दंड और देह, शत्रु को ज्ञानी कैसे बना सकते हैं? यदि कोई शत्रु है हमारा, उसको कौन सा ज्ञान देना चाहिए? शत्रु को ज्ञानी बनाना, उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई हमारा मान लो बिजनेस में शत्रु है तो उसको अपने बिजनेस का ज्ञान देना वैसे नहीं, वो ज्ञान नहीं, उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यहां जो ज्ञान की बात हो रही है, वो ज्ञान है जिसके कारण वो अच्छा इंसान बने। मनुष्य को मनुष्य के स्तर पे लाने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, वो ज्ञान वो कैसे दे सकते हैं? वो तो शत्रु है, किस रूप में आप दे सकते हैं, किस रूप में, किस प्रकार से आप शत्रु को वो ज्ञान दे सकते हैं ताकि वो मनुष्य के स्तर पे आ जाए। हम देव के स्तर पे नहीं कह रहे, मनुष्य के स्तर पे साधारण, वो कौन सा ज्ञान है? कैसे समझाएंगे? समझेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं, शत्रु है, क्यों समझेगा आपसे? समझे ही नहीं सके, बिल्कुल नहीं समझा सके। उन्हें प्रयास किया चारों का, लेकिन उन्हें फिर इसके लिए क्या करना पड़ा? दंड और भेद वो नहीं कर पाए ना। दुर्योधन को साम और दाम से नहीं समझ पाए दुर्योधन। साम भी किया, उनको बहुत ज्ञान देने का प्रयास किया कृष्ण ने, उन्होंने कहा ये सब नीति शास्त्र ये कहते हैं वो कहते हैं, परंतु दुर्योधन तो भी फिर भी ठीक है आज की स्थिति से। उस समय दुर्योधन फार बेटर, बहुत अच्छे, क्योंकि उन्हें कम से कम सुना तो सही। आज का जो शत्रु है, शत्रु बोलते पहले तो बात करना ही बंद कर देता है, चैनल क्लोज, तो क्या करोगे? फिर भी जब शत्रु ज्ञान भी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है, तो दंड और भेद तो है ही, दंड और भेद की नीति तो करनी ही पड़ती है। परंतु पहली दो नीति को पहले अपनाना चाहिए। तो ज्ञान कैसे दे सकते हैं शत्रु को, आपको क्या लगता है? कैसे, मतलब भगवान का आश्रय? इज नॉट, भगवान के आश्रय से ही समझा सकते हैं। प्रश्न ये है कैसे समझाए। देखिए ये तो पता है कैसे समझाए। उदाहरण है, मैं आपका शत्रु हूं, फॉर एग्जाम्पल। अब आप मुझे कैसे समझाएंगे, ज्ञान कैसा देंगे आप मुझे? मैं आपसे सुनने के लिए तैयार है, आप है खत्म शत्रु है, बात ही नहीं करना है। आप यदि ये सारे घटनाओं को ध्यान से देखें तो उसमें क्या किया गया है? उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण की गई है, बहुत महत्वपूर्ण, भगवत गीता की इस परिपेक्ष में हम चर्चा यदि करें, शत्रु के साथ वार्ता करने वाला कौन है? थोड़ी देर के लिए भगवान भूल जाइए, मतलब थोड़ी देर के लिए भगवान के स्तर पे उनको मत समझिए, शत्रु के साथ बात करने वाला कौन है, मीडिएटर कौन है? उसके माध्यम से आप शत्रु को ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए जो मीडिएटर है वो ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे नीति शास्त्र कहते हैं यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पहले गुरु के पास जाना चाहिए। बरोबर। दुर्योधन के कुछ गुण हमने जब समझाए थे तो उसमें एक गुण ये देखा गया कि ऐसे आपातकालीन स्थिति में दुर्योधन कैसा भी हो वो द्रोणाचार्य के पास गया। पांडव जो है कृष्ण पे अति विश्वास रखते हैं, उनकी पूर्ण श्रद्धा है और वो ये जानते हैं कि कृष्ण ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति ही शत्रु को ज्ञान दे सकता है, समझा सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो शत्रु को समझाने के लिए हमने पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हायर अथॉरिटीज, गुरु हो, ज्ञानी हो, साधु संत या गृहस्थ भी है, ज्ञानी है, कोई भी जो ज्ञानी व्यक्ति हमारे समझ से जो रियलाइज सोल है उनके पास जाना चाहिए। वही हमारे शत्रु को ज्ञान दे सकते हैं, उस माध्यम से आप शत्रु में बदलाव ला सकते हैं। परंतु होता क्या है, हम मेडिएटर किसको बनाते हैं? हाँ, सिस्टम को बनाते हैं। हमारे जो आज के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है ना, वो सिस्टम को हम बनाते हैं, तो वो इट बिकम स्पाइरल, वो घूमते 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 आदमी एक शत्रु था, अभी 100 शत्रु हो गए। एक शत्रु को ज्ञान देने गए, सिस्टम का आधार लेके 100 शत्रु बन गए। है ना। सो इसलिए शत्रु को ज्ञान देना है तो आपको ज्ञानी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। नीति शास्त्र कहते हैं, अपनी भगवद गीता के प्रथम 3-4 श्लोकों में हमने देखा कि द्रोणाचार्य के पास गया था, गुरु के पास जाना चाहिए, है ना, गुरु तत्व के पास जाना चाहिए, साधु संत के पास चाहिए, जिसको शास्त्र का ज्ञान है उससे एडवाइस लेके उनको बताना चाहिए कि हमारे शत्रु को भी आप परिवर्तित कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अभी पटापट हम जपा एक माला करते हैं, एज यूजुअल जो लास्ट टाइम से हमने शुरू किया है। सो इससे ये जो प्रयास है जप करने का, ये प्रयास इसलिए है कि कृष्ण हमारे साथ रहे, क्योंकि हम सब युद्ध लड़ रहे हैं, है ना, वी ऑल आर फाइटिंग वॉर, युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध जन्य स्थिति में कृष्ण हमारे साथ रहे, इसलिए जप करना अर्थात उस कृष्ण को पुकारना। तो हम सब मिलके जब पुकारेंगे तो कृष्ण को आना पड़ेगा, प्रभु जी माता जी कृष्ण को आना पड़ेगा, पुकारो, आना पड़ेगा अपने साथ। सब इतने सब लोग हम पुकारेंगे, सबको लाभ होगा। हम लोग कितने, 125 लोग हो गए सपोज, 130-135 लोग, 130-135 लोग सब मिलके जब एक माला करते तो सबको 135 माला का लाभ मिलेगा, हर एक व्यक्ति को 135 राउंड्स का लाभ मिलेगा। सो इसलिए वी ऑल विल चैंट वेरी सीरियसली, बहुत गंभीरता से हम एक माला जप करेंगे। जिसके पास माला नहीं है वो ऐसे ही चिंतन कर सकते हैं, परंतु नेक्स्ट टाइम से माला अवश्य लाइए, एक बैग लीजिए और एक बैग में माला लेके आइए। है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।